क्या हुआ बेटा, आज आपको नींद नहीं आ रही? आशुतोष जी ने आंखें खोलते हुए अपने पैर के पास बैठी राधिका को देखा, जो उनके पैर दबा रही थी। उनका सवाल सुनकर राधिका हौले से मुस्कुरा दी। कुछ देर आपके पास बैठने का मन था। आशुतोष जी ने गौर से उसे देखा। लबों पर मुस्कान थी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी और सुनपन झलक रहा था और चेहरे पर उदासी। आशुतोष जी उठकर बैठ गए और परेशान निगाहों से उसे देखते हुए चिंतित स्वर में सवाल किया, राधु बेटा क्या हुआ? आप उदास और परेशान लग रही हैं। कोई परेशानी है? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? राधिका ने पल भर सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने आगे कहा, पापा आपको वो याद है जिनका रिश्ता सबसे पहले मेरे लिए आया था? रुबीना आंटी ने आपको और मम्मी को उनके बारे में बताया था, और जब आप उन्हें देखकर आए थे तो आपने मुझसे कहा था कि वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमसफर की तलाश आपको थी मेरे लिए, बिल्कुल आपके जैसे। राधिका को आज भी वो दिन याद था। उस रिश्ते को लेकर कितना झिझक रही थी वो, घबरा भी रही थी और विरोध भी कर रही थी, पर जब आशुतोष जी ने कहा कि लड़का उनके जैसा है तो उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा था, चुपचाप उनकी बात मान ली थी। क्योंकि भले ही सब लड़कियों को अपने पिता जैसे पति की तलाश नहीं होती, पर उसने तो अपने पिता जैसे पति की ही ख्वाहिश की थी। भले ही वो ये नहीं जानती थी कि वो कितने अच्छे पति थे, पर पिता शानदार थे और उसने बचपन से देखा था उन्हें अपनी मम्मी की इज्जत और उनकी परवाह करते। ऐसे ही हमसफर की चाहत थी उसे, जो उससे प्यार करे या ना करे पर उसकी इज्जत करे, उसकी परवाह करे। राधिका की बात सुनकर आशुतोष जी को भी वो वक्त याद आ गया। याद है बेटा, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? आपके लिए वो हमारी पहली पसंद थे। जैसे हमसफर की तलाश हमें अपनी बेटी के लिए थी, वो बिल्कुल वैसे थे, और हमें पूरा विश्वास था कि वो हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उनके साथ भले ही जिंदगी आसान नहीं होती, पर वो उम्र भर आपका साथ निभाते और एक बेहतर जीवन साथी साबित होते, आपके दुख सुख में आपका साथ देते और सबसे बड़ी बात हमारी बेटी का ख्याल रखते। पर वो रिश्ता हो ना सका, जिसका अफसोस आज भी है हमें, कि अगर आपका रिश्ता उनसे जुड़ा होता तो आज आप अपनी गृहस्थी में सुखी होती। उनके चेहरे पर दुख व अफसोस के भाव उभर आए थे और उसमें खुली थी उनकी बेबसी और लाचारी। पापा, वो रिश्ता उन्होंने तोड़ा था क्योंकि उन्हें मैं पसंद नहीं आई थी, या हमने तोड़ा था? राधिका का सवाल सुनकर आशुतोष जी चौंकते हुए उस वक्त की यादों से बाहर आए। रिश्ते के लिए उन्होंने ही मना किया था बेटा, वरना हम आपका रिश्ता उन्हीं से तय करते। पर आज अचानक आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? पापा, वो कल जिन्हें आपने घर पर देखा था, जिन्होंने स्कूटी खराब होने पर मेरी मदद की थी, वो वही थे, और बातों बातों में उन्होंने कहा कि हमने रिश्ते से इनकार किया था क्योंकि वो मेरे काबिल नहीं थे। राधिका के मुताबिक ये सुनकर आशुतोष जी को हैरान होना चाहिए था, पर उनके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव उभर आए थे। माथे पर कुछ सिलवटें उभर आई थीं और किसी ख्यालों में खो गए थे वो। उनका ये रिएक्शन राधिका के मन में एक भय को जन्म देने लगा था, और कहीं ना कहीं अब उसे भी शक होने लगा था कि शायद माधव की बात सच थी और वो इतने वक्त से एक गलतफहमी में जीती आ रही थी। पापा क्या हुआ, आप क्या सोचने लगे? राधिका की आवाज़ आशुतोष जी के कानों से टकराई और वो अपने ख्यालों से बाहर आए। नज़र राधिका के चेहरे पर पड़ी और मन एक बार फिर अतीत की यादों में खो गया। फ्लैशबैक, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उनका अपना घर नहीं है, वो किराए पर रहते हैं? अर्चना जी ने नाराजगी भरे स्वर में आशुतोष जी से सवाल किया। आज ही उन्हें मालूम चला था कि माधव अपने परिवार समेत किराए के घर में रहता था, और इसी बात पर वो नाराज लग रही थीं। आशुतोष जी कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही उन्होंने सख्त लहजे में आगे कहा, आज हम आपका कोई बहाना या सफाई नहीं सुनेंगे। आप हमें साफ साफ बताइए कि क्या आप ये पहले से जानते थे कि उनका घर भी अपना नहीं है, वो किराए पर रहते हैं? उन्हें यूं गुस्से में देखकर आशुतोष जी ने शांति से उन्हें स्थिति समझाने की कोशिश की। अर्चना जी, वो अभी भले ही किराए पर रह रहे हैं, पर उनका अपना घर है, 100 गज में बना है, पर उनके पिता की मृत्यु के बाद उस पर उनके चाचा ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने जमीन भी खरीदी हुई है, जल्दी ही उस पर घर बनवाने वाले हैं। आप क्यों बेवजह इतनी चिंता कर रही हैं? राधु हमारी भी बेटी है, हमें भी उनकी परवाह है। अपनी बेटी के भविष्य की चिंता हमें भी आपकी जितनी ही है। हम उनके लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। कैसे रहें हम निश्चिंत, ये जानकर भी कि जिस घर में आप उनका रिश्ता तय कर रहे हैं वो घर और लड़का उनके काबिल ही नहीं है। हम शुरुआत से आपको कह रहे हैं कि माधव हमारी बेटी के लिए ठीक नहीं। कहाँ हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, और कहाँ उन्होंने कॉलेज भी ओपन से किया हुआ है। ना आगे पीछे कोई देखने वाला है और ना ही अपना घर है। कोई पक्की नौकरी भी नहीं है, उस पर माँ बहनों की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। वो कैसे रखेंगे हमारी बेटी का ख्याल, और हमारी बेटी उस छोटे से किराए के घर में कैसे रहेगी? चलिए थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। माधव अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और सबसे बड़ी औलाद था। उसके बाद उसकी 3 बहनें हुईं। अपने बाप की छत्रछाया में अपनी माँ की ममता भरे आंचल तले चारों बच्चे अपना बचपन खुलकर जी रहे थे। अनुपमा जी भी अपने परिवार और पति संग खुश थीं। 10वीं में था माधव जब अचानक ही उसके पापा उन्हें छोड़कर चले गए और उनकी जिंदगी संघर्षों से भर गई। घर उसके पापा के नाम था और उनके जाते ही उसके चाचा ने घर पर दावा ठोक दिया। उनका घर हथियाने के लिए अपने परिवार समेत उसी घर में रहने चले आए और जो कभी उस घर के मालिक हुआ करते थे उनकी हालत नौकरों जैसी हो गई। किसी तरह एक साल निकला, फिर अपने बच्चों की दुर्गति होते देखकर अनुपमा जी ने एक अहम फैसला लिया और उस घर को छोड़कर पास ही किराए का घर लेकर अपने बच्चों के साथ वहां रहने लगी। तब से उनके चाचा ने उनके उस घर पर कब्जा किया हुआ था। अनुपमा जी ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। जब उससे गुजारा मुश्किल होने लगा, अपनी माँ को संघर्ष करते देखकर माधव ने भी काम शुरू कर दिया। सुबह गाड़ी धोने जाता, अखबार डालता, आधा दिन गैरेज में काम करता और फिर स्कूल जाता। बेटा था और सबसे बड़ी औलाद, जिसका असर ये हुआ कि कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। कॉलेज ओपन से किया उसने, क्योंकि पढ़ने का बड़ा शौकीन था और इंटेलिजेंट भी। अब वो गैरेज में काम करने के साथ होम ट्यूशन भी देने लगा था। कुछ साल गुजरे, किसी तरह उनकी जिंदगी रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही थी और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी कि अनुपमा जी की आंख ने धोखा दे दिया। उनका काम बंद हो गया और इनकम भी। माधव को यहाँ अगर किसी से थोड़ा सहारा मिला तो वो ठीक उसकी बीच वाली बहन निशा। बड़ी बहन कविता एक नंबर की लापरवाह, कामचोर और आवसी थी और दिमाग की बेहद तेज, सिर्फ अपना फायदा देखती थी। न पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी थी और न ही काम करने में उसका मन लगता था। माधव ने उसे किसी तरह कॉलेज पास करवाया, उसे कंप्यूटर सीखने कहा, पर उसकी दिलचस्पी मेकअप में थी तो उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, लेकिन काम वहां भी नहीं किया। जब उसके पास पैसे खत्म होते तो कुछ दिन काम कर लेती, फिर घर बैठकर ऐश की जिंदगी काटती। घर खर्च में एक पैसा नहीं देती थी और खर्चे उसकी राजकुमारियों जैसे थे। निशा ने ही घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो कुछ कमाई होने लगी। शिखा तो छोटी थी पर जितना होता था निशा की मदद करवा देती थी। माधव ने बड़े भाई नहीं बाप का फर्ज निभाया था। तीनों की सारी जिम्मेदारी उसी ने उठाई, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, घर की जरूरतें, सबका ध्यान वही रखता था।
अपने सभी सपनों और ख्वाहिशों की तिलांजलि देकर उसने दिन रात मेहनत की, अपने परिवार का पेट भरा, पर जिंदगी के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी। दिखने में अच्छा था, शरीर भी ठीक ठाक बनाया हुआ था और दिमाग का बहुत तेज था। लड़का अच्छा था, जिम्मेदार था, ठीक ठाक कमाता था, पर राधिका के आगे कुछ फीका पड़ जाता था। राधिका की मम्मी ने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में समझौता करते करते अपनी हर इच्छा और ख्वाहिश को मारते हुए बिताई थी और ऐसे ही अपनी चार बेटियों को भी पाला था। उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसे वर की तलाश थी जो उसे हर सुख सुविधा दे सके, उसे खुश रख सके। माधव देखने सुनने में उन्हें पसंद था, पर उसके पीछे उसकी विधवा माँ और तीन बहनें थीं जिनकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। एक साधारण परिवार था, एक तीन कमरों का घर था, 15-20 हज़ार में चार लोगों का परिवार चलाता था। तीन बहनों की शादी का भार भी उसके कंधों पर था, ऐसे में उनकी बेटी को क्या सुख देता, कैसे उसकी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करता, यही उनकी चिंता थी। तभी वो शुरुआत से इस रिश्ते को जोड़ने में झिझक रही थी और अब जब उन्हें मालूम चला कि उनका अपना घर तक नहीं तो अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी उन्हें। अर्चना जी, माधव एक समझदार और काबिल लड़का है। अकेले उसने अपने पूरे परिवार को संभाला है। शांत प्रकृति का है, बड़ों का आदर करता है, उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। बिल्कुल वैसा है जैसे लड़के की तलाश आपकी राधु के लिए थी। हाँ, उनका अभी अपना घर नहीं है, कुछ जिम्मेदारी है उनके कंधे पर। लेकिन आपको याद नहीं, जब हमारी शादी हुई थी तब हमारे पास भी कुछ भी नहीं था। शुरुआत में आपको कुछ परेशानियां हुई, पर अपनी मेहनत मजदूरी और आपके साथ से हमने दिल्ली जैसे शहर में अपना घर बनाया, अपनी चारों बेटियों को एक अच्छी जिंदगी और उच्च शिक्षा दी। हमने आपकी और हमारी बेटियों की जिम्मेदारी उठाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी और पूरा विश्वास है अपनी पसंद पर कि माधव भी हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और राधिका के लिए एक बेहतर जीवन साथी साबित होंगे। ऐसा आपको लगता है कि आपने कोई कमी नहीं रहने दी। हमसे पूछिए कि आपके साथ जुड़े इस रिश्ते को निभाने के लिए हमने कितने समझौते किए हैं, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं हमने और कितना मन मारना पड़ा है हमें। एक एक पैसा खर्च करने से पहले कितना सोचते हैं हम, कितनी मुश्किलों से घर चलाते हैं, कैसे अपनी बच्चियों की जरूरतें पूरी की हैं हमने और कितनी बार उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी ना कर पाने पर छुपकर आंसू बहाए हैं हमने। उन्हें चीजों के लिए तरसते और समझौते करते देखकर कितना दिल टूटता है हमारा। हमने जो भी सहना था सह लिया, पर अपनी बेटी को हम अपनी जैसी जिंदगी नहीं देंगे। उनका हाथ एक ऐसे लड़के के हाथ में सौंपेंगे जो उन्हें रानी बनाकर अपनी पलकों पर बिठाए, उनकी हर जरूरत हर इच्छा को पूरा करे, उन्हें हर सुख सुविधा दे सके, उन्हें अपनी किसी ख्वाहिश का गला न घोटना पड़े। अर्चना जी की बातें सुनकर आशुतोष जी सुन रह गए। इस बात पर दोनों के बीच एक लंबी बहस छिड़ी थी। आशुतोष जी माधव से राधिका का रिश्ता करने के पक्ष में थे और अर्चना जी उनके खिलाफ। आशुतोष जी राधिका का उज्ज्वल भविष्य चाहते थे और अर्चना जी उसका सुखी जीवन, जो उन्हें माधव के साथ नजर नहीं आ रहा था। गलत दोनों में से कोई भी नहीं था, बस उनका नजरिया कुछ जुदा था। जहां अर्चना जी का मानना था कि पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं और सुखी जीवन का मतलब ऐशो आराम भरी जिंदगी है, वहीं आशुतोष जी दिल की संतुष्टि को ही असली खुशी मानते थे। खैर, आशुतोष जी उस वक्त में खोए थे जब राधिका की आवाज उन्हें अतीत की उन यादों से खींचते हुए वर्तमान में ले आई। पापा, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, क्या रिश्ते के लिए इनकार हमारी ओर से हुआ था? टू बी कंटिन्यूड।